रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे तिनके पद वंदन किए नासस विघ्न यरे।
नाभाजी महाराज ने कई भक्तों में शबरी का बड़ा आदर किया। शबरी की बहुत सी बात तो आपने कल सुनी। एक शबरी के साथ बड़ी विचित्र घटना हुई। शबरी बहुत शील संकोच वाली भगवान की भक्ति में रहने वाली मतंग ऋषि की आज्ञा का पालन करने वाली ऋषि मुनियों की बड़े पवित्र भाव से सेवा करने वाली और अपनी सेवा को गुप्त रखने वाली थी। वो चाहती सेवा का भाव किसी को पता नहीं चले। एक दिन रास्ता बुहारते बुहारते तालाब से लेकर कुटिया तक रास्ता बुहारे थे, एक बाबा जी आए। वो थोड़ा जल्दी निकली भी, अरे महात्मा आ रहे हैं तो जल्दी के मारे, उधर महात्मा भी जल्दी आ रहे थे स्नान के लिए, ये भी जल्दी की तो जल्दी जल्दी के अंदर क्या हुआ, ठोकर खाकर गिर गई शबरी। और महात्मा जी के थोड़ा उसके पल्ला अड़ गया महात्मा जी के, तो महात्मा जी नाराज हो गए। अरे तू नीच जाति की है, मेरा स्पर्श हो गया महाराज, मैं तो खुद भक्ति जा रही थी, कहीं आपके स्पर्श न हो जाए, मैं ठोकर खाकर गिर गई, मुझे क्षमा करो। क्या क्षमा करे, तुम नीच जाति की हो, तुम ऐसे खूब नाराज हो गए। वो बिचारी नीचा मुख करके चली गई। अब जो ही महात्मा जी गए उस सरोवर में स्नान करने के लिए, तो वहां कीड़े ही कीड़े हो समुद्र में, सरोवर में तालाब में, अब वो कीड़े ही कीड़े हो गए। तो उसको महात्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ कि अभी आते कीड़े कैसे हो। उन्होंने सब ऋषि मुनियों को बुलाया कि साहब देखो तालाब में कीड़े हो गए, इससे हम जल पीते हैं, ये तो हमारे बहुत काम आता है, कीड़े हो गए अब क्या करें। कोई किसी को समझ में नहीं आया। दूसरे दिन भगवान पधारे। भगवान पधारे तो भगवान से निवेदन किया, महाराज हमारे यहां बड़ी समस्या है, क्या कि कल ऐसे ऐसे इसमें कीड़े पड़ गए। भगवान ने कहा देखो भाई, शबरी जहां साफ सफाई करती हो वहां कीड़ा पड़ जाए, मेरे जस्ता नहीं। मुझे पूरी घटना सुनाओ, क्या बात है। तो ऋषियों ने कहा महाराज हमें तो कुछ पता नहीं, हमको तो अमुक ऋषि ने आकर कहा। तो जिसने शबरी को डांट फटकार लगाई उससे पूछा कि भाई तुम्हारी शबरी से क्या बात हुई। कहा कि शबरी को कोई सुअर नहीं चलने का। हम आ रहे थे हमारे ध्यान में मस्ती में और हमारा पल्ला उसका पल्ला हमारे शरीर के लग गया। अब महाराज उसका नीच जाति में जिसका जन्म हुआ है, अरे वो नीच जाति की भलाई हो, वो मेरी भक्ति करने वाली है। तो कहा महाराज पिछले जन्म के पाप से इस जन्म में नीच जाति मिलती है, तो नीच जाति मिलने के कारण से वो भक्ति कैसे करे। मेरी भक्ति में जात पात का कोई कारण नहीं है, मेरी भक्ति सब कर सकते हैं। और देखा जाए तुम्हारे इस वन में मैं आया ही शबरी के कारण से, उनको मेरा रास्ता ही नहीं है। शबरी अपने गुरु वचनों पर विश्वास करके मेरी प्रतीक्षात्मक भक्ति में लगी हुई है। भक्ति के कई रूप हैं, कोई शरणागति की भक्ति, कोई दास्य भक्ति, कोई सख्य भक्ति, कई भक्ति है। उस भक्ति में ये प्रतीक्षा भक्ति है, प्रतीक्षा। संतों ने कहा महाराज ये प्रतीक्षा भक्ति तो हम जानते ही नहीं क्या होता है। फिर भगवान ने प्रतीक्षा भक्ति की ऐसी महिमा बताई कि मन में उत्सुकता तो बनी रहे कि भगवान है तो सही, मिलेंगे लेकिन कब मिलेंगे। है तो सही भगवान लेकिन वो क्यों नहीं मिल रहे, कब मिलेंगे, कितनी देर हो गई, कब मिलेंगे, ऐसी प्रतीक्षा होती है। मारवाड़ी सबसे अडीक रहती है, उसमें एक प्रेम का समावेश होता है, वो प्रेम मुझे खींच लेता है। जितना प्रेम मतंग ऋषि में नहीं था उससे ज्यादा प्रेम शबरी में आया। गुरु में इतना प्रेम नहीं था, गुरुजी भी भक्ति कर देते शबरी के, गुरुजी भी, पर वो सामान्य भक्ति होती है, वैसी भक्ति थी, प्रतीक्षात्मक भक्ति नहीं थी उनकी। उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा कई दिन तक अपने श्वास को, प्राणवायु को रोका कि राम जी आए तो दर्शन करेंगे, पर उतना ही रोक पाए जितना वो रोक सकते थे। लेकिन शबरी तो बिचारी जानती नहीं प्राण को कैसे रोका जाए, योग मार्ग जानती नहीं, हट मार्ग जानती नहीं, ये तो गुरु वचनों पर विश्वास करके केवल मेरी प्रतीक्षा करती रही। तो जो मेरी भक्ति करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर कोई जाति की दोष की बात नहीं देखनी चाहिए। महात्मा जी आपसे बड़ी भारी गलती हुई है, यदि आपको इस सरोवर को शुद्ध करना हो, कीड़ों से रहित करना हो, तो आप सम्मान के साथ शबरी को कहो कि वो उस सरोवर में जाए और वो जाकर सरोवर में पानी में खड़ी हो जाए, सब कीड़े वहां से समाप्त हो जाएंगे। तो शबरी को निवेदन किया, शबरी वहां गई। देखो भगवान ने अपने चरण स्पर्श के लिए नहीं कहा कि उस पानी का मेरे चरणों से स्पर्श कराओ। संतों ने तो कहा कि महाराज आप ही कर दो। नहीं, ये आपराधिक कृत्य है। जिसका अपराध होता है, जिसका अपमान होता है, वही जब संतुष्ट होता है तब वो अपराध मिटता है। भगवान ने उनको उपदेश दिया जैसे आपने किसी का अपराध कर दिया हो। अब अपराध तो किया आपने उसका और क्षमा मांगते हैं आप दूसरों से, ऐसे नहीं होगा। उसी से ही क्षमा मांगो जिसका अपराध हुआ है। क्या महाराज हम तो आपसे क्षमा मांग लेते, आपसे बड़ा संसार में कौन है। मेरा तो अपराध किया नहीं आपने, किया तो शबरी का किया है। शबरी चित्त में प्रसन्न हो जाएगी तुम्हारे व्यवहार से तो ये सब ठीक हो जाएगा। फिर शबरी वहां गई और वो जाकर के जल में यूं खड़ी हुई तो सब जल शुद्ध हो गया। तब उन सबके समझ में आया है कि भगवान की भक्ति के सामने जाति की न्यूनता कोई बाधा नहीं दे सकती। इस विषय में संत महापुरुष चोखा मेला की कथा बोलते हैं। चोखा मेला ये दक्षिण में हुआ, महाराष्ट्र में एक भगत था, वो जाति का चमार था, लेकिन भगवान की बहुत भक्ति करता था। वो और उसकी पत्नी दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक बार गांव में कोई भैंसा मर गया, मरने के बाद वो फूल गया, तो चोखा और मेला ये दोनों पति और पत्नी उसको बांध करके घसीटने लगे, तो बिचारों से घसीटा नहीं गया। अब गांव में तो सब प्रकार के लोग होते हैं, कई लोगों ने उनको डांटना चालू किया, अरे तुम गांव से हमसे खाते तो हो और ये करते हो और वो करते हो, तुमसे ये भैंसा नहीं चलता, खाली करो इस जगह को। वो बिचारे से हम तो जोर खूब लगाते हैं, बड़ा कष्ट हुआ उनको, वो सिरके ही नहीं, लोग उनको डांट लगाए। इतने में ही उन्होंने भगवान को याद किया, हे भगवान आपकी भक्ति में बाधा पड़ रही है, व्यर्थ का यहां समय लग रहा है, क्या करूं। इतने में भगवान आए और पीछे से भगवान ने धक्का लगाया उस मरे हुए भैंसे के, आगे से तो वह घसीट रहे, पीछे से भगवान लग रहे। अब चोखा मेला क्या रोए दोनों के दोनों, बहुत रोए कि महाराज आपको प्रार्थना करके हमने आपसे ये काम करवाया, बहुत रोए, बहुत कष्ट हुआ। इसीलिए कहते हैं भगवान से कोई कामना पूरी नहीं करवानी चाहिए, भगवान को अपनी भगवत्ता छोड़ करके बहुत नीचे आना पड़ता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आओ और कुछ करो, आप तो कोई उपाय बताओ, कोई कृपा करो, तो भगवान तो खुद ही आ गए, तो उनको बुझाए, ऐसी बातें भगवान से कहनी नहीं चाहिए। भगवान से कहने की क्या जरूरत, भगवान सर्वज्ञ है तो वो जानते हैं, समर्थ है तो वो कर सकते हैं, और दयालु है तो उनके पास उनको दया की कमी नहीं। भगवान के अंदर तीन बात हरदम याद रखनी चाहिए, एक तो भगवान समर्थ है, एक भगवान सर्वज्ञ है, एक भगवान दयालु है। दयालु है इसलिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि महाराज मेरा ये काम कर दो, जरूरत नहीं, क्यों करें, क्यों कहें भगवान। बाबा जी ने खूब भगवान की भक्ति की, भगवान प्रकट हो गए कि महाराज कोई बात करो, क्या क्या मांगो, कुछ मांग लो, मांगने की इच्छा नहीं, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं कि आप दर्शन दे, मैं तो आपकी भक्ति में डूबा हुआ था, अरे कुछ मांगो, मैं रह नहीं सकता हूं दिए बिना, मैं दिए बिना रह नहीं सकता, कि हम क्या करें, हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं, न हम आपसे कुछ मांगेंगे और न आपके पास कुछ देने के लिए है, क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आपके पास त्रिलोकी है और क्या है, स्वर्ग है, पाताल है, संसार के भोग पदार्थ, यही तो है, ये हम चाहते ही नहीं चाहते। भगवान ने कहा देखो जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी सेवा नहीं करूं तब तक मुझे कोई चैन नहीं मिलती, कोई सेवा का काम बताऊं, मेरे कोई सेवा है ही नहीं। भगवान ने मेरी घबराहट कैसे मिटे, आप ही घबराहट, आप जानो, घबराहट आपकी बनाई हुई, हम क्या करें। ऐसे ऐसे भगत होते हैं उनके सामने भगवान फिर हार जाता है, हार जाता है। तो चोखा मेला ने क्या किया, एक दिन बाजार से बढ़िया केले लिए, बहुत बढ़िया मीठे, तो केले लिए तो मन में आया कि चलो ठाकुर जी की भोग लगा दे। तो गए मंदिर में, जहां सीमा थी वहीं खड़े हो गए मंदिर के वहां जहां सीमा थी। देखो जो जितना भगवान की भक्ति में डूबा रहता है वो उतना ही नियम कायदों का अच्छा पालन करता है। तो उसकी एक सीमा थी खड़े होने की, वहां खड़ा हो गया। पुजारी आया, क्या बात, डांट करके कहा, जगह जी मैं केला लाया हूं, कोई अन्न की वस्तु तो लाया नहीं हूं, फल के भोग लगाने में कोई जात पात अड़ती भी नहीं है, ये भगवान के मैं चार केला भोग लगाने के लिए लाया है। तेमार के तुम्हारे केले भगवान के कहीं लगेंगे, निकल जाओ यहां से। धक्का दे करके निकाल दिए। और केला लेकर के आए तो धक्का देके निकाल दिया। चोखा मेला रोने लग गया, बहुत दुखी हो गया। पत्नी ने पूछा, क्या बात हुई कि आज तो भगवान ने मेरे केले स्वीकार नहीं किए, कोई मेरे से अपराध हो गया, पुजारी जी ने स्वीकार नहीं किया, फेंक दिए, धक्का दिया। तो दोनों को बड़ी चिंता हुई। और वो रात्रि के अंदर उनको नींद नहीं आई, बैठे रहे बेचारे कि ओहो हमसे कोई गलती होगी, भक्ति में कोई गलती होगी। बैठे रहे आधी रात बीती, पुंडरीक नाथ भगवान स्वयं उनके घर पर आए कि चोखा मेला तुम्हारा केला है ना, बहुत भूखा हूं, मुझे केला दे खाने के। रोने लग गया महाराज, अरे तुम ज्यादा बात को मुझे केला दे, बहुत इच्छा हो रही है। तो केला ला के दिया। भगवान ने जब केला मांगा तो चोखा मेला ने उत्तर दिया, महाराज मेरे केले आप खा लोगे तो देवे ना, मुझे भूख लग रही है, तू बातों में समय लगा रहा है। तो चोखा मेला ने केला अर्पण कर दिया। चार केला थे, दो तो भगवान ने खा लिए, छिलके वहां डाल दिए, और दो केला भगवान ले जाने लगे। ले जाने लगे तो चोखा मेला ने कहा, महाराज आप ले जाते क्यों हैं, कि नहीं ये ले जाऊंगा, बहुत मीठे केला है। दो केला मैंने ले लिए, दो केला मैं लक्ष्मी जी के लिए, रुक्मणी जी के लिए ले जा रहा हूं। तो दो केला रुक्मणी जी के लिए ले गए। रुक्मणी जी ने वो केले देखे, वहां मुंह बिच गया, ये क्या लाए, कहां से लाए, इन केलों के लिए आपको मैं ही मिली क्या, 16108 रानियां हैं उनके अंदर, मैं ही मिली इन केलों के लिए, नहीं खाती। भगवान ने कहा, अरे खा के देखो, मुझे बहुत अच्छे लगे तब मैं लेके आया हूं, केवल फल नहीं है इसमें, देने वाले का भाव है, भाव इस वस्तु के अंदर उसके भाव का स्वाद है, खा करके देखो। तो रुक्मणी जी ने कुछ तो खाया तो बहुत अच्छा लगा, कुछ रख लिया। इधर तो ये लीला हुई, और उधर पुंडरीनाथ भगवान का सुबह कपाट खोला गया तो मंदिर में केले का छिलके पड़े थे, केले अंदर केले के छिलके, केले के छिलके अंदर पड़े, कुछ खाया हुआ और कुछ नहीं खाया हुआ। तो वो पुजारी समझ गया कि ये केले के छिलके तो वही है जो कल चोखा मेला को हमने वापस लौटाए थे, उसके लिए नहीं थे, वही केले होने से छिलके वे के वे। क्या पता कब चुपचाप आया होगा, क्या पता कब चुपचाप उसने फाटक खोला होगा, और क्या पता वो ठाकुर जी को बेखा गया होगा। अब पुजारी को बड़ा क्रोध आया, हमारे इष्ट देव को बेखा करके गंदे फल चढ़ाए तुमने। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि सीधे पुजारी जी ने किवाड़ तो बंद कर ली और वो सीधा चोखा मेला के वहां गया और इतना मारा उसको, इतना मारा चोखा मेला को खूब मारा। चोखा मारा के मेरा कसूर बताओगे तूने वो केड़े ठाकुर जी? कहा कि मैंने ठाकुर जी को केड़े वहां नहीं खिलाए थे, ठाकुर जी यहां खाने के लिए आए थे। झूठ बोलते हो, यहां खाने के लिए तेरे पास ठाकुर जी आएंगे खाने के लिए? अब वो मार खाए जाए और बेचारा कहा जाए मैं क्या करूं, मैंने नहीं, फिर वो छिलके वहां कैसे देंगे? क्या हमने प्रवेश ही नहीं किया है? ऐसे करते वापिस गए पुजारी कि अब जाए ठाकुर जी का खोले। अब ठाकुर जी ने अंदर से बंद कर दिया दरवाजा, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया तो पुजारी जी सोचते हैं कोई अंदर दूसरा पुजारी गया होगा तो खटखटावे आवाज लगावे, कोई आवाज आवे ही नहीं। भगवान ने कहा कौन है? कि महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, मेरा सेवक नहीं है, मेरा सेवक वो है जो मेरे आदेश का पालन करे। तुम्हारे व्यवहार से मेरे चित्त को अपार कष्ट हुआ, फिर तुम अपने को सेवक बता दो? फटकारा भगवान। कहने लगा महाराज क्या गलती हो गई मुझसे, इतना बड़ा तूने अपराध कर दिया और फिर कहता है क्या गलती हो गई? वो चोखा मेला कल कितने भाव से केला लाया था, उसको तुमने वहां से अपमानित करके निकाल दिया और उसके घर पर जाकर के मैंने वो केले का स्वाद लिया, मुझे अच्छे लगे, मैं ये केला लेकर आया था, ये केले मैंने और रुक्मणी ने खाए हैं और तुमने जाकर चोखा मेला पर ये आरोप लगाया कि मैंने चोखा मेला में जाकर के वहां पर मेरे को बहका दिया और ऐसे क्या, फिर उसको तुमने पीटा मारा, उसको नहीं खोलते हम तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करते। अब वो कहने लगा महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे मालूम नहीं था कि चोखा मेला इतनी बड़ी भक्ति करता है। अरे भक्ति करने वाले की तुम जात पात देखते हो, लौकिक व्यवहार में जात पात देखते, मेरी भक्ति करने वाले के अंदर भक्ति को ही देखते, दूसरी बातें मत देखो, मैं तो नहीं खोलता आपके बारे में, जाओ। अब पुजारी जो रोया गिड़गिड़ाया महाराज अब कभी ऐसा अपराध नहीं करूंगा, सब भक्तों में आपकी भक्ति का ही दर्शन करूंगा, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूं पुजारी? तुम जाओ चोखा मेले को अपने कंधे पर बैठा करके मेरे पास लाओ और चोखा मेला कह देवे कि अब पुजारी का अपराध खत्म हो गया तो मैं किवाड़ खोलूंगा, तो नहीं खोलूंगा। तब वो चोखा मेला के पास गया पुजारी जी, पुजारी जी ने जाके कहा चोखा मेला जी मेरे से तो बहुत बुरा अपराध हो गया आपके प्रति, ठाकुर जी ने किवाड़ बंद कर दी, मेरे से नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। अब भक्त हृदय होता है ना, सेठ जी ने कहा कि चार प्रकार का क्रोध होता है, एक तो होता है आकाश में लकीर के समान, अब ये आकाश है, आकाश का तो होता है खाली जगह, ये खाली जगह, ये लकीर किया दिखती है क्या आपको? नहीं दिखती, केवल उंगली की इतना ही दिखता है, लकीर नहीं दिखती। तो एक तो होता है आकाश के लकीर, एक होता है पानी की लकीर। अब पानी हो यहां, अनुमान लगाओ यहां, अब पानी है लकीर करेंगे तो जो इधर करेंगे इधर मिटती जाएगी। एक होता है बाड़ू में लकीर, बाड़ू में लकीर की तो लकीर तो दिखती, थोड़ी देर में बाड़ू में घुर जाएगी। और एक होती है पत्थर की लकीर, इसीलिए कहते हैं लोह की लकीर पत्थर की लकीर, पत्थर की पत्थर में लकीर कर दो, वो पत्थर जब तक नहीं टूटेगा तब तक वो लकीर नहीं मिटेगी। तो दुष्ट आदमी का जो बैर भाव होता है, क्रोध भाव होता है, वो होता है पत्थर के लकीर के समान। वो कहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन बैर नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, बैर नहीं छोड़ेंगे, बदला लेकर लेंगे। अपने बेटों को कहता है देखो उनके साथ हमारा बैर है, राजीपा मत कर लेना, यदि तुम राजीपा कर लोगे तो मेरी संतान नहीं कहलाओगे, परलोक में भी मेरी आत्मा को कष्ट होगा। इतना बैर बांधते हैं, वो पत्थर के लकीर वाला बैर है। और साधारण आदमी, थोड़ा सज्जन आदमी होता है, उसका होता है बालू की लकीर के समान, थोड़े दिन में मिल गया तो छोड़ो, अच्छी बातें याद रखो, क्यों बुरी बातें याद रखो, किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, हो गया बीत गया, चलो जाना। साधन भजन करने वाला होता है उसका होता है जड़ में लकीर के समान। और सिद्ध महापुरुष का क्रोध होता है वो आसमान में लकीर के समान। संकादिकों ने जय और विजय पर क्रोध किया तो कैसा क्रोध था, वो आकाश में लकीर के समान, उन्हीं के भले के लिए क्रोध किया। तुम तीन जन्म तक राक्षस होगे, तुम्हारा उद्धार करके स्वयं भगवान आएंगे, ये साफ है। नारद जी ने साफ दिया भगवान को, कपि आकृति तुम की न हमारी, तुमने हमारी बंदर जैसी आकृति की, तुम्हारी स्त्री जब गुम जाएगी तो यही तुम्हारी सहायता करने वाले होंगे, ये कुछ साप है, ये साप नहीं है, ये तो वरदान है उल्टा। यही कहते हैं कि बंदर की आकृति नहीं, ये बंदर ही तुम्हारा नुकसान करेंगे, ऐसी बात संत के हृदय में पैदा होती नहीं, दूसरे को नुकसान। तो ये आकाश की लकीर के समान उनका क्रोध होता है, जो परम भक्त होते हैं उनका आकाश में लकीर के समान। तो उनका चलो साहब हम चलते हैं, भगवान ने बुलाया है आप कंधे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब फिर जो है पैदल पैदल ही गए, उनका देखो भगवान की आज्ञा का पालन करना है, मैं आपको कंधे पर ले जाऊंगा, नहीं तो भगवान कहेंगे नहीं, हमें भगवान से प्रार्थना कर दूंगा, पुजारी जी प्रार्थना कर दूंगा कि मैं मेरी मर्जी से पैदल पैदल आया हूं। पुजारी जी लेकर आए, चौका मेरा ने प्रणाम करके कहा महाराज जी मुझे कंधे पर ला रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी आपके सामने, मैं इनके कंधे पर कह रहा हूं, पुजारी जी हैं, पूजा करते हैं आपकी, और महाराज आपने इनको मेरे लिए बोल दिया कि वो क्षमा करे तो क्षमा तो आप करेंगे, आपने कर दिया तो मेरी तरफ से क्षमा हो गई। फिर वो पुजारी जी का किवाड़ खोला और तब जाकर के उसकी सेवा भगवान ने स्वीकार की। भक्ति के अंदर जात पात को देखना भगवान को अच्छा नहीं लगता। ये तो हो गई शबरी जी की कथा, अब है आगे जटायु जी की कथा। जटायु जी का सबसे पहले रामायण में दर्शन कब होता है, जब अगस्त ऋषि के कहने से भगवान पंचवटी पर आते हैं और वहां जटायु का राम जी से मिलना होता है। और जटायु कहता अच्छा तुम दशरथ के बेटा हो, दशरथ तो हमारा मित्र है। लेकिन रामायण में कहीं खुलासा नहीं हुआ कि जटायु तो एक गीर है, दशरथ जी एक महामानव है, राम के पिता है, वो मित्र कैसे हुए दशरथ जी के। ये कथा न तो वाल्मीकि में आती है, न अध्यात्म रामायण में आती है, न तुलसीकृत में आती है, ये तीनों में ही आती है कि सखा है हमारे दशरथ जी सखा। तो अब प्रश्न होता है कि दशरथ जी जटायु के सखा कैसे हुए। अब उसकी बात सुनिए। देखो दशरथ जी महाराज एक बार अपने ज्योतिषियों के साथ में बैठे हुए थे, काल पर काल। सब ज्योतिषियों ने कह दिया कि महाराज भयंकर काल पड़ने वाला है। कि काल पड़ेगा कि हाँ काल पड़ेगा। तो बताया क्यों पड़ेगा काल। कहते हैं कि जब शनिश्चर है वो रोहिणी नक्षत्र का भेदन करता है तब वहां पर शकट भेद नाम का योग बनता है और शकट भेद योग के अंदर 12 बरस तक अकाल पड़ता है। 12 बरस तक। दशरथ जी ने कहा कि तब तो हमारी जनता अकाल में त्राही त्राही मरेगी। देखो अकाल सतयुग से पढ़ते आए अपने यहां थोड़ा होता है हाई हुई करने लग जाते हैं। इन वर्षों में ज्यादा ही देखते हैं अकाल तो बहुत देखे हैं लोगों ने। अकाल तो होता है तो होता है सतयुग से होता है। जब अपने मरुभूमि में तो प्राय अकाल के वर्ष ज्यादा जाते हैं सुकाल कम रहता है। 5-5, 7-7 वर्ष तक लोग अकाल के छाया में रहे और उसके बाद जमाना होता था। तो प्राचीन युग में लोगों का संतोषी स्वभाव था। भगवान में आस्था थी। भगवान के विधान को वे शिरोधार्य मानते थे। मानते थे कि कोई न कोई ऐसा हम लोगों का कर्म है जीवों का कर्म है तो है। तो अकाल आदि पड़ते थे तो लोग अपने कर्म को सुधारते कि देखो हमने पाप किए उसका फल है ना हमको पाप नहीं करने चाहिए। अकाल आदि से अपने कर्म पर विचार करते थे। तो दशरथ जी ने विचार किया कि वो इतना भयंकर अकाल हमारे यहाँ पड़े का कारण क्या है। कोई यहाँ हमारे यहाँ अधर्म तो होता नहीं दुराचार होता नहीं। वशिष्ठ जी को कहा वशिष्ठ जी महाराज ये अकाल कैसे दूर हो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो साहब इस अकाल का तो यही है कि आप शनिश्चर की चाल बदल दो और शनिश्चर की चाल बदली जाएगी आकाश में यज्ञ करोगे तब वो रोहिणी का भेदन नहीं करेगा तो आपका अकाल सुकाल में बदल जाएगा। अब वो रोहिणी के वहां जाकर के यज्ञ करना हुआ आकाश में तो कहा कि चलो यज्ञ तो हम करवा देंगे आपके पास जो रथ है दिव्य रथ उस दिव्य रथ से आकाश में चलेगी चलो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पहले आप चलिए आप जाकर के वहां यज्ञ आदि का स्वरूप पहले तय करिए फिर उसके बाद हम आएंगे। वशिष्ठ जी के आदेश से दशरथ जी गए अपने रथ से ऊपर आकाश में गए दिव्यास्त्रों सहित गए और सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहां रोहिणी के पीछे आकर खड़े हो गए कि शनि इसमें से पार होगा तो शनि को पार नहीं होने देंगे। शनि की दृष्टि पड़ी कि दशरथ है वो रथ लेकर आया है शायद मुझे रोहिणी नक्षत्र में से जाने से रोकेगा। तो शनि ने अपनी दृष्टि को वक्र कर लिया। वक्र माने टेढ़ी टेढ़ी नजर से दशरथ जी को देखा। तो शनि की जब वक्र दृष्टि होती है तो बचना मुश्किल होता है। तो जब वक्र दृष्टि बनाई तो दशरथ जी का रथ था वो रथ भस्म हो गया। रथ भस्म हुआ तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लगे आकाश। इतने में ये जटायु जी गीद है गीद यहां घूमते घूमते वो दशरथ जी के नीचे आ गया कहा मेरे पर बैठ जाओ और मैं आपको अयोध्या छोड़ देता हूं। तब जो है वो इसके ऊपर विराजमान हो गए। कहा कि नहीं मैं केवल ऊपर सैर सपाटे के लिए नहीं आया था यहां पृथ्वी पर अकाल पड़ेगा शनि की गति को रोकने के लिए आया था। तब फिर बाद में कहा अच्छा चलो आप शनि से प्रार्थना करो। तो कहा मैं प्रार्थना के लिए यज्ञ करने आया था कि भाई यज्ञ करूं, यज्ञ का स्थान वगैरह सब देखने के लिए आया था। तो शनि ने मुझे तो देखते ही वक्र दृष्टि से देखा तो मेरा रथ भस्म हो गया, तो आपने आकर के मुझे सहायता दे दी। तो क्या आप शनि से प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर कोई कितना ही टेढ़ी दृष्टि से देखने वाला हो उसके हृदय में प्रेम पैदा होता है। आपको तो अपना काम करना है, इतनी प्रजा को सुखी करना है, आपको गरज है शनि की, तो प्रार्थना करने में आपके क्या हर्ज है। दशरथ जी ने कहा बात तो ठीक है, वैसे भी ग्रह गोचर है, ये हमसे बड़े हैं, तो आप इनसे प्रार्थना करो। तब गीतराज ने जटायु जी ने अपना पूरा आश्रय दिया और उस पर बैठे बैठे दशरथ जी ने स्तुति करी शनिश्चर की। शनिश्चर की स्तुति कही तो शनिश्चर सामने आया कि बोलिए दशरथ जी आप क्या चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा देखिए आप रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करके 12 बरस तक अकाल पड़ेगा, हमारी प्रजा बड़ी दुखी हो जाएगी, सबके लिए अनाज घास फूस और पानी दुर्लभ हो जाएगा। तो तीन चीजों का अभाव होता है, पानी का अभाव, घास का अभाव और अन्न का अभाव। तो पशु पक्षी है, गाय वगैरह है, ये तो सब घास खाते हैं, पानी तो सभी पीते हैं, अनाज मनुष्य खाता है, इसलिए आप रोहिणी नक्षत्र में से मत जाइए, यही आपसे ठीक है, हम रास्ता बदल देंगे। और हम आपको एक बात बता देंगे, जो आपने हमारी स्तुति गाई है ऐसी शनि की मेरी जो स्तुति है उसको जो भी आदमी गाएगा तो किसी न किसी आदमी के मैं पीछे लगा रहता हूं, वो मेरा पीछा उसका छूट जाएगा, मेरी कोई बाधा नहीं रहेगी। दशरथ जी को खूब बड़ा आश्वासन मिल गया और दशरथ जी को लेकर के और वो जटायु लाकर अयोध्या में उनको आराम से उतार दिया। जटायु से दशरथ जी ने कहा कि आपका नाम क्या है, कि मेरा नाम जटायु है, आप आकाश में, कि मैं आकाश में घूमता हूं, नक्षत्रों के पास ही घूमता रहता हूं, मैं हूं एक मेरा भाई है उसका नाम संपाति है, वो मेरे से बड़ा है, हम दोनों भाई विचार करते हैं सूर्य के वहां जाए, कई नक्षत्रों में तो जाए, सूर्य का वहां जाने की बात आई तो बहुत गर्मी लगी, तो मैं तो बच गया और मेरा भाई जाने कहां गिर गया। कोई बात नहीं। तो दशरथ जी ने कहा कि मेरे से आप कोई चीज मांगो, आपके लिए बढ़िया कहीं रहने की जगह बता दूं। ना ना, हमारा काम तो उड़ते फिरते रहते हैं, कोई बढ़िया कंदरा गुफा बता दूं आपको, गुफा में रहो। नहीं नहीं, तो कुछ तो आप मेरे से ले कि आपका जो बड़ा बेटा है ना वो मुझे दे दो। दशरथ जी ने कहा कि मेरे तो बेटा हुआ ही नहीं, बड़ा और छोटा तो कब हो कि जब वो बेटा हो जाए, बड़ा बेटा हो फिर छोटा हो तब बड़े को दू, मेरे तो बेटा है ही नहीं। अच्छा दशरथ जी महाराज, यदि आपके बेटे हो जाए तो दे दूंगा। देखो दशरथ जी, आप दे नहीं पाएंगे, जरूर दे दूंगा, तुमने इतना उपकार किया है मेरा, मेरे प्राण बचाए, बेटा नहीं दूंगा, बेटा दे दूंगा। ठीक, अब उस समय पर सब विवाह वगैरह हुए, सब खीर के द्वारा अर्जन वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब पैदा हुए। तो जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, चारों एक साथ हुए, उनमें जटायु भी आया, आकर के दशरथ जी से कहने लगा आपके चार बेटे हो गए ना, हो तो गए, तो चार बेटों में बड़ा बेटा मेरे को दे दो। तो कहा कि चलो अब जटायु जी को तो केवल परीक्षा लेनी थी, दशरथ जी ने कहा चलो मैं आपको बच्चे को बता देता हूँ। फिर वो जटायु जी आए और भगवान की तरफ देखे, भगवान ने जटायु जी को देखा, भगवान खिलखिलाए, जटायु जी बहुत प्रसन्न हुआ भगवान के दर्शन करके। कौन क्या जटायु ने कहा अच्छा देखो अभी तो ये बहुत छोटा है, कौन इसका लालन पालन करेगा, मेरे पंख है ना ये बहुत तीखे हैं, मेरी चोंच बड़ी तीखी है, कहीं मैं इसको अपने पंखों से पंजों से ले तो लेऊं, लेकिन इसका शरीर बहुत कोमल है, कहीं ये कष्ट को प्राप्त हो जाए, इसलिए अभी तो आप इसका पालन करो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब ले जाएगा। अब इधर तो विश्वामित्र जी आए, इधर वो जटायु जी आए, एक दिन पहले जटायु जी आए और दूसरे दिन ही विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने कहा आपके बेटे को ले जाना चाहता हूं। जटायु जी आए, पहले आए ही थे, आपको आपने कहा था बड़ा बेटा को दे दूंगा, लाओ मेरे को दे। दशरथ जी सोचे कि अब इसको देऊं, अब राम के प्रति प्रेम बढ़ता गया, जटायु जी को लेना तो था नहीं, जटायु जी ने तो परीक्षा ली थी। तो दशरथ जी ने कहा कि जटायु जी मैं प्रतिज्ञा में तो बंधा हुआ हूं कि आप ये मेरा बेटा आपका है, परंतु मेरा इसमें कुछ मोह ज्यादा है, यदि आप कहो तो थोड़े दिन में इसको और अपने पास रख लूं, कोई बात नहीं, जो आपका है वो मेरा है, मेरा है वो आपका है, पर ये आपके पास रहेगा नहीं, मेरे पास नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। जटायु जी चले गए, दूसरे दिन विश्वामित्र जी आए, जटायु की बात याद आई कि जटायु ने कहा था कि आपके पास नहीं रहेंगे, रवाना हो गए। फिर उस वन के अंदर मिले जटायु जी, जहां ताड़का वगैरह हमारा वहां पर देखते घूमते थे, यहां ही आ रहा है। फिर जब जो है वनवास का हुआ तब भी वहां जटायु जी घूमते रहते थे, देखते रहते थे। अब राम जी तो सर्वज्ञ होने पर भी राम जी लीला में थे, चित्रकूट में कहीं जटायु जी का दर्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद वहां पंचवटी में ही दर्शन हुआ। रावण के साथ जब जटायु का युद्ध हुआ और जटायु के प्राण निकल गए, तब भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। उस समय उनको दशरथ की बहुत फूट फूट के याद आई, राम जी को, राम जी को बहुत याद आई, और उनके मन में ये भावना हुई कि आज मैंने दशरथ जी का अंतिम संस्कार मेरे हाथ से कर दिया, वहां तो नहीं कर सका ये यहां कर दिया। इसीलिए रामचरितमानस में एक दोहा आता है कि सीता हरण तात जनी कहव पिता सन जाए, जो मैं रामत कुल सहित कही दशा न जाए। सीता जी के हरने की बात आप जाकर के और राम जी से दशरथ जी से मत कहना। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाय, जो मेरा मत कुल सहित कहि दशानन आय। दशानन को आकर के अपने आप कहना पड़ेगा, कुल सहित आकर के वो दशानन कहेगा कि ऐसी ऐसी दशा हुई हमारी, राम ने ऐसी दशा की, सीता का हरण किया, ये हमारी दशा हुई। मरे तो बहुत थे, बाली भी मरा था, बाली को तो नहीं कहा, भगवान ने बाली को नहीं कहा और किसी को नहीं कहा, इसी जटायु को ही क्यों कहा, जटायु का दशरथ जी का आपस का बड़ा संबंध था। इस प्रकार से जटायु जी का प्रसंग हुआ। जटायु जी के बाद ध्रुव जी का नंबर आता है, ध्रुव जी की भी वंदना की। देखो ध्रुव जी महाराज की वंदना में ध्रुव जी की कथा प्राय सब जानते हैं, जो कथा नहीं जानते उतने अंश को बता देते हैं। उनकी विमाता ने ताना मारा, ध्रुव जी घर से निकल गए, बीच में नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, पहले परीक्षा ली कि ध्रुव को वास्तव में अब भगवान की भक्ति करनी है या इसको पिता की गोद में ही बैठना है। नारद जी ने कहा कि आधा राज्य दिला दूं तो पिता की गोद की क्या बात करता है, आधा राज्य तेरा चल, क्या करेगा भक्ति करके। भक्ति बड़ी कठिन है, भगवान मिलते नहीं है सुगमता से, हमें ही देख लो। मैं ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो भक्ति ही करूंगा और त्रिभुवन का उत्कृष्ट पद प्राप्त करके रहूंगा। अब पिता की क्या गोद लेंगे, अब तो ऊपर वाले की गोद लेंगे। भगवान की प्राप्ति हो गई, दर्शन दे दिए, कालांतर में ध्रुव जी राजा भी हो गए। उनका छोटा भाई था वो मारा गया शिकार में, ध्रुव जी महाराज का अखंड राज्य था। पर एक बात थी कि ध्रुव जी सत्संग करते थे तो भगवान सत्संग में आते थे। सत्संग क्या, अंदर ही अंदर अच्छी अच्छी बातों का, संत महात्माओं के उपदेश का खूब मनन करते थे। ये सत्संग है, ये बहुत पवित्र जगह है। ये जब आदमी स्वयं अच्छी बातों का अपने अंतःकरण में मनन करता है तो वो अंतःकरण बहुत पवित्र जगह है, उसमें भगवान स्वयं पधारते हैं और उन सत्संग के भावों को स्वीकार करते हैं। जो भाव हमारे अंदर नहीं आते हैं वो भाव वो पैदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मनीषी की लोक यात्रा नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं पंडित गोपीनाथ कविराज, बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे वो, काशी के अंदर बड़े विद्वान थे और विश्वविद्यालय के बहुत ऊंचे पद पर रहे हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उन्होंने कहा कि मैंने एक देवदूत के साथ में विचार किया, एक देवदूत मेरे पास है, देवताओं का दूत, वो रात्रि में रोज आता था और मुझे ऊपर के लोगों की घटना बताता था। वो कहता था कि यहाँ पृथ्वी लोक पर जो लोग सत्संग करते हैं वो अपने को देखते हैं कि हाँ क्या ठीक है, चलो सत्संग करते हैं, बैठ गया हो गया, ये उपेक्षा से करते हैं, ये इस बात को भूल जाते हैं कि अरे मरने के बाद भी आपको खूब अच्छा सत्संग मिलेगा। अभी मैं सत्संग से आता हूं, वहां बाकायदा बहुत पवित्र जगह होती है, सब ऋषि मुनि जो सत्संग किए हुए प्राणी हैं वे वहां अपने निरामय शरीर से बैठते हैं। ये शरीर नहीं तो सामय शरीर है, निरामय माने निरोग और सामय माने रोग सहित। अपने शरीरों में तो कितने रोग लगते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, प्रमाद होता है और सोते भी है और शरीर की सब क्रिया भी करनी पड़ती है, वहां कुछ नहीं होता, शरीर दिव्य होते हैं उनके। सत्संग वहां चलती है, अच्छे अच्छे महात्मा इतनी बढ़िया बात बताते हैं तो उस समय में सब लोग बहुत प्रेम से सत्संग सुनते हैं, क्योंकि उनकी यहां के सत्संग संस्कार गए हुए। यहाँ फिर भी सत्संग सुनने में लोग प्रमाद कर देते हैं, पर वहाँ जाते हैं तो इतनी प्रिय सत्संग लगती है। कभी माया का विवेचन, कभी ब्रह्म का विवेचन, कभी जीव का विवेचन, कभी सगुण, कभी निर्गुण, कभी साकार, कभी निराकार, वो ऐसे वर्णन में डूब जाते हैं। कहने वाले, सुनने वाले, वहाँ सत्संग होता है। कविनाथ ने लिखा कि मेरे को आकर के लिखाया है उसने कि आज ये बात चली, आज ये बात चली, और लिखते लिखते कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, और वहाँ क्या बात हुई है वो सब मैं लेकर के आपके पास फिर समय पर आऊंगा। तो उन्होंने पूछा कौन कौन संत हैं, तो उन कई संतों के नाम बताए, कई संतों के नाम बताए, उनमें रामकृष्ण परमहंस का भी नाम बताया। तो कहते हैं वो चेहरा कैसे पहचानते हो, ये यहाँ तो सब जल जला के खत्म हो जाता है, अब ये चेहरा आग में खत्म हो जाएगा, फिर वहां जाके कैसे पहचाना जाएगा ये वो है कि नहीं, वहां एक अलग ही उसी आकृति का एक दिव्य चेहरा बनता है उसका, ताकि पहचान सके। वहां संतों के बीच में ऐसी पहचान के लिए कई प्रकार के उपाय होते हैं, तो सत्संग के द्वारा ऊपर के लोकों में भी बड़ा आनंद का अनुभव होता है। मानव शरीर में जो खूब अच्छा सत्संग कर लेते हैं उनको कहना ही क्या है, सत्संग का तो एक व्यसन लगना चाहिए, व्यसन। जैसे चिलम पीने वाले को, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी के बिना घबराहट होती है, अफीम वाले को घबराहट होती है, नशा करने वाले को नशे के बिना बेचैनी होती है, ऐसे सत्संग के लिए मनुष्य को बेचैनी करनी चाहिए। सत्संग न मिले तो क्या करें, सत्संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। सेठ जी ने ये गीता तत्व वेचनी जो टीका लिखी है गीता पर, वो रोज एक महात्मा उनके पास बैठते थे और लिखाते थे। अब सेठ जी के तो पचासों काम, कभी कभी अनध्याय होता तो पास में बैठ करके कहे सेठ जी आज हमको भिक्षा अच्छी नहीं लगी, भिक्षा को इच्छा भिक्षा अच्छी नहीं लगी, तो क्या है आप हमारे छाती पर कुछ भी हो, चाहे रात में ही समय निकालना पड़े आपको, कुछ न कुछ लिखाओ, नहीं तो आज का दिन बेकार जाएगा हमारा, चाहे दो पंक्ति लिखाओ, चाहे कितना ही लिखाओ, कुछ लिखाओ। ऐसे पीछे पड़े रहते तब जाकर के गीता तत्ववेचनी पुस्तक लिखी। महाराज जी ने बताया था कि हम कई लोग बैठे हुए थे उनके कमरे में, और जब ये भूमिका लिखी जा रही थी तत्ववेचनी की, उस समय सेठ जी आंख बंद करके कुछ बातें ऐसी बोले, उस कमरे के अंदर ऐसी शांति फैली, ऐसी शांति फैली, कमरे से निकलने का मन ही न हुआ, न सेठ जी का मन हुआ, न वहां बैठे रहने का मन हुआ, कहीं जाने आने का मन नहीं हुआ, उसी शांति में ही डूबे थे। ऐसा विलक्षण अनुभव महाराज जी ने कहा कि हम लोग बैठे थे, सबको हुआ, स्वयं सेठ जी को भी हुआ। इसलिए उसकी भूमिका में बहुत विचित्र बातें सेठ जी ने लिखी दी है। अपने तो इतना ही समझना है कि जो सत्संग करते हैं उन लोगों का बड़ा भारी कोई भगवत अनुग्रह मिल गया, भाग्य तो क्या कहें, ये भगवान की कृपा मिल गई, उनको आगे भी ऐसे सत्संग मिलेगा। पर ये है कि अभी के सत्संग को रुचि पूर्वक थोड़ा ग्रहण करें, उसको व्यवहार में लाने की कोशिश करें, उसको अपने आचरण में लाने की कोशिश करें, आगे भी सत्संग मिलता है। गोपीनाथ कविराज की पुस्तक आज भी है, और स्वयं महाराज जी ने ही सबसे पहले प्रेरणा देकर बताया कि उस पुस्तक में ऐसा लिखा है और हमने पढ़ा है, महाराज जी का मैंने पढ़ा है कि वो सत्संग चलती, वो बातें हो रही, वो अब ऋषि आए, आज वो महात्मा आए, आज वो महात्मा आए, ऐसी ऐसी बातें आ रही। तो ध्रुव जी महाराज थे, वो ध्रुव जी महाराज जब मन में यूं बैठ करके ब्रह्म चिंतन करते, भगवान की कृपा पर विचार करते, तो भगवान स्वयं उनके यहां मन में आकर के बैठते, चर्चा होती, मन ही मन में चर्चा होती। एक दिन ध्रुव जी ने पूछ लिया, कि भगवान जब मैं अपनी माँ को छोड़कर गया, पिता को छोड़कर गया, राजधानी को छोड़कर गया तो नारद जी मिले और नारद जी कहते हैं भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है ध्रुव, बहुत कठिन है। और महाराज मुझे तो आपने 6 महीने में दर्शन दे दिए। अब ऋषि की बात झूठी नहीं होती, ऋषि का तो ये कहना है और मेरा अनुभव भी झूठा नहीं है, तो आप हमको बताओ कि आप सुगमता से मिलते हो कि कठिनता से मिलते हो। तो भगवान ने कहा कि देखो मेरी प्राप्ति के विषय में न तो सुगमता का न कठिनता का भाव बनाओ, क्योंकि मेरी प्राप्ति सब चीजों से अलग है। कोई भी चीज पहले अप्राप्त होती है फिर प्राप्त होती है। अब जैसे पहले ये नहीं मिली, अब आकर के मिल गई, तो ये पहले नहीं थी अब मिली है, पर मैं ऐसा नहीं हूं। इसलिए मेरी प्राप्ति को सुगम या कठिन कहना बनता नहीं है, ये अपने अपने अनुभव की बात है। अपना अनुभव देखो, अपने अनुभव से क्या सिद्ध होता है। नारद जी का अनुभव कठिनता का है तो उन्होंने सही कहा है। तुम्हारा अनुभव यदि 6 महीने में हो गया तो अगर तुमसे भी कोई बड़ा भक्त होगा वो कहेगा 6 मिनट में ही भगवान मिल सकते हैं, कोई 6 सेकंड में ही मिल सकते हैं, कोई कहेगा भगवान तो कालातीत है उसके लिए काल की आवश्यकता ही नहीं। जो कहेंगे वो सही है। ध्रुव जी ने कहा महाराज ऐसे नहीं, कुछ मुझे आप समझाओ। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि तुम क्या समझना चाहते हो, कठिन समझना चाहते हो कि सुगम, कि मैं दोनों ही समझना चाहता हूं। तो सुगम तो तुमने समझ लिया कि कितना सुगम है मेरा मिलना। तुम अभी जरा सा ध्यान किए और मैं आकर के बैठ गया तुम्हारे हृदय में, सुगम है ना? सुगम नहीं, अति सुगम, अति सुगमाति सुगम है। अब मुझे आप बताओ कठिनता की बात, कठिनता की बात बताऊं? मेरे साथ चलो, चलो नौका में बैठे 7 समुद्र पार की यात्रा, 7 समुद्र पार करके और वहां खूब विशाल हड्डियों का पहाड़ बताया। ध्रुव ये क्या है? ये तो महाराज हड्डियों का पहाड़ है, तपस्या का और हड्डियों के पहाड़ का क्या मतलब है महाराज? मैं समझा नहीं। तुमने मेरी प्राप्ति कठिनता के विषय में पूछी ना, इतनी बार तेरी हड्डियां इकट्ठी हुई तब जाकर के मैं तुझे मिला हूं। यदि ये बात तुझे पहले बता देता तो भजन में उत्साहित होता क्या कि महाराज मैं तो भजन वजन छोड़ देता, इतनी हड्डियां गलानी पड़ती है, इतनी बार जन्म लेना पड़ता है। हड्डी तो क्या है, मुट्ठी भर हड्डियां होती है, इतना हड्डी का पहाड़ कि बस। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं सुगम हूं कि कठिन हूं ये बात तुम छोड़ो और केवल मेरे भगवान मेरे भजन में ही लगे रहो। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज की कथा है। ध्रुव जी महाराज की कथा भागवत में और शास्त्रों में खूब विस्तार से बता रहे हैं। अंत में ध्रुव जी महाराज ने राज्य दे दिया अपने पुत्र को और स्वयं बद्री नारायण में चले गए और वहां जाकर खूब भगवान की आराधना करने लगे। तब उनके सामने भगवान के यहां से वैकुंठ से विमान आया और उस विमान में बैठने लगे तो ये काल है, मृत्यु है, इसने आकर कहा कि यहां सिर पर पैर रखो क्योंकि इस संसार में सबको मैं खाता हूं, तुम्हारे पर मेरा बस नहीं चला, यहां पैर रखो और फिर विमान में बैठ जाओ। फिर उनको अपनी मां की याद आई, वो रही तुम्हारी मां, मां आगे आगे जा रही है। ऐसे ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम में पहुंच गए, विष्णु पद को प्राप्त हो गए। अब आगे अम्बरीश जी का चरित्र है। बोलो फिर स्वर भंग नहीं हो जाए इसलिए। श्री
कृष्ण गोविंद हरे।